पाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 4 श्लोक संख्या 33। ना उद्विग्न चित्ता विवसनेशो निस्पृहः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक्। नान्त इंद्रिय प्राण शरीर दिहि सदा प्रशांत कामः रहिता असुरः असुरः नोद्विग्नचित्तो व्यसनेषु निःस्पृहः नोद्विग्नचित्तो व्यसनेषु निःस्पृहः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तुद्रेक् श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुद्रेक्। दान्तेन्द्रियप्राणशरीरदिः सदा दान्तेन्द्रियप्राणशरीरदिः सदा प्रशान्तकामो रहितासुरोऽसुरा प्रशान्तकामो रहितासुरोऽसुरा द्वेग्नचित्तो व्यसनेषु निःस्पृहः चित्तो व्यसनेषु निःस्पृहः वस्तुद्रेक् ಅಶಾಂತ ಕಾಮೋರಹಿತ ಸುರ ಸುರ ವಿಘ್ನ ಚೇತೋ ವ್ಯಸನೇಶ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಚಿತ್ತ ಸನೇಶ ನಿಸ್ಪೃಹ ಸೃಷ್ಟೇಶ ಗುಣೇಶು ವಸ್ತು ದೃಕ್ ಶಾಂತ ಕಾಮೋದಿತ ಸುರ ಸುರ ಚಿತ್ತೋ ವ್ಯಸನೇಶು ನಿಸ್ಪೃಹ ವಿಘ್ನ ಚಿತ್ತೋ ವ್ಯಸನೇಶ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಏಷು ದೃಷ್ಟೇಶು ಗುಣೇಶು ಸುದೃಕ್ ಅಂತೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರ ದೇಶ ಶಾಂತ शांत कामो तो सुरो सुरा। माता जी विघ्नचित्त व्यसनेषु निष्प्रिया तेन प्राण शरीर सदा शांत कामो चित्तो व्यसनेषु निष्प्रिया कांतेन्द्रिय प्राण शरीर सदा शांत कामो सुरासुरा विघ्नचित्त व्यसनेन
ना नहीं उद्विग्न विचलित चित्त जिसकी चेतना व्यसनेषु कठिन परिस्थितियों में निष्प्रिय इच्छा रहित श्रुतेषु सुनी हुई बातों में विशेषतः पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग लोक को उत्थान दृष्टेषु साथ ही क्षणिक दृश्य वस्तुओं में गुणेषु भौतिक प्रकृति के गुणों के अंतर्गत इंद्र तृप्ति वाले विषयों में अवस्तुद्रेक देखते हुए मानो असार हो दांत नियमित करते हुए इंद्रियां प्राण सजीव शक्ति शरीर दिहि तथा बुद्धि सदैव प्रशांत शांत किया गया। कामः जिसकी भौतिक इच्छाओं में रहित पूर्णतया विहीन असुरः यद्यपि असुर वंश में उत्पन्न। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद यद्यपि प्रहलाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ था किंतु वे स्वयं असुर ना होकर भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अन्य असुरों की तरह वे कभी भी वैष्णवों की ईर्ष्या नहीं करते थे। कठिन परिस्थितियों आने पर भी कभी शुद्ध नहीं होते थे और वेदों में वर्णित सकाम कर्मों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भी रुचि नहीं लेते थे। निस्संदेह वे हर भौतिक वस्तु को व्यर्थ मानते थे, इसलिए वे भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया रहित थे। वे सदैव अपनी इंद्रियों तथा प्राण पर संयम रखते थे। स्थिर बुद्धि तथा संकल्पमय होने के कारण उन्होंने सारी विषयों वस्तुओं का दमन कर दिया था। तात्पर्य, इस श्लोक में पता चलता है कि कोई मनुष्य केवल जन्म के कारण योग्य अथवा अयोग्य नहीं होता। प्रहलाद महाराज जन्म से असुर थे, फिर भी उसमें पूर्ण ब्राह्मण के सारे गुण पाए जाते थे। कोई भी व्यक्ति गुरु के निर्देशन के अनुसार पूर्णतया योग्य बन सकता है। प्रहलाद महाराज इसका ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किसी प्रकार गुरु का चिंतन करके उनके आदेशों को शांतिपूर्वक ग्रहण किया जाए। ओम अज्ञात विरांदस्य ज्ञानांजन शलाक चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्मैष्टवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधौ दीनबंधौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते दे प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज बड़ा पवित्र दिवस है, वेरी ऑस्पिशियस डे टुडे। आज श्रीपाद रामानुजाचार्य का आविर्भाव दिवस है। वन ट्रांसलेट हुए प्रभु जी से सो तो आज थोड़ा प्रहलाद महाराज के बारे में चर्चा करेंगे जिस श्लोक के अनुसार। उसके बाद हम श्रीपाद रामानुजाचार्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक में आखिरी शब्द है असुरो असुरः। असुरो असुरः ये शब्द का मतलब है असुर परिवार में जन्म लेने पर भी वो असुर के रूप में नहीं थे, यह असुरी प्रवृत्ति उनके पास नहीं था। प्रभुपाद जी सार रूपे तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति भले ही कोई परिवार में जन्म लिया क्यों ना हो, जन्म के ऊपर आधारित होते हुए उनका लक्षण बताया नहीं जा सकता, गुण बताया नहीं जा सकता। उनका जो गुण है, उनका जो वर्ण या आश्रम है, वो गुणों के ऊपर आधारित है। भगवान भगवता में कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागश तस्य कर्ता माम विद्य कर्तारम्यम। तो ये चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये चार वर्णों का आश्रमों को मैंने सृष्टि किया है, किसके ऊपर आधारित होकर किया है? गुणकर्म विभागश। ये जन्म कर्म नहीं है या जन्म गुण नहीं है, गुणकर्म। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र होने पर भी उनके अंदर सारे सद्गुण थे। कुछ सद्गुणों का वर्णन इस श्लोक में किया गया है, थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला सद्गुण था उनके अंदर, न उद्विग्न चित्त व्यसनेषु निष्प्रिय निष्प्रिय उनके अंदर कोई इच्छा नहीं था, कोई भौतिक इच्छा नहीं था, कोई स्प्रिय मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा बोलूँगा तो ऐसा होना चाहिए, तो कोई भौतिक इच्छा नहीं था। ये भौतिक इच्छा नहीं होने की वजह से न उद्विग्न चित्ता व्यसनेषु, कितने भयानक स्थिति भी क्यों ना हो, न उद्विग्न उनके चित्त में उनका चेतना जो है उद्विग्न नहीं होता था, डिस्टर्ब नहीं होता था। तो इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रकट होता है कि हमारे सारे जितने भी उद्विग्न हैं, दुख है, वो भौतिक इच्छा की वजह से है। एक शुद्ध भक्त का इतना भी इच्छा नहीं रहता कि मेरा शरीर का पालन हो, मेरा शरीर का भी देखभाल हो, अगर मृत्यु भी सामने आता है तो उद्विग्न नहीं होता है, क्योंकि उनका कोई शारीरिक इच्छा, शरीर को रखने का भी इच्छा नहीं है। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन में गाते हैं कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, तो आप मुझे मारना चाहते हो मारो, रखना चाहते हो रखो, मुझे जीने का भी इच्छा नहीं है, मुझे कोई भी मरने का भी इच्छा नहीं, कोई ऐसा भौतिक इच्छा है ही नहीं, मेरा एक ही इच्छा है आपका सेवा करना। तो आप इस भौतिक जगत में इस शरीर के साथ सेवा करने दोगे मौका, या आध्यात्मिक जगत में जाके आपका शुद्ध सेवा करें, तो ये दोनों में मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। ये मुक्ति का भी इच्छा नहीं रहता, अस्तित्व में जिसके पास मुक्ति का इच्छा रहता है वो भी उद्विग्न रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, अरे कब मुक्ति, मुक्ति प्राप्त होगा कि नहीं, मुक्ति प्राप्त होगा तो नहीं, ऐसा रहता है। लेकिन जिनके पास ये निष्प्रिय कोई भौतिक इच्छा नहीं है, वही उसके द्वारा ही हम अनुद्विग्न रह सकते हैं। भगवान भगवता में कहते हैं अनुद्विग्न मना पार्था योग मुंजन्माश्रय, आप अनुद्विग्न रहो, अनडिस्टर्ब। ये भक्त का सबसे पहला लक्षण है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी फॉर डिवोटीज, ही शुड बी अनडिस्टर्ब्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, हर परिस्थिति में उनको अनुद्विग्न होना, कोई विचलित नहीं होना अति आवश्यक है। निंदा सुनो किसी का, या किसी का, या आप अपना किसी और की तरफ निंदा, या कोई आप चाहते हो इस प्रकार होना, नहीं होता है तो भी हमको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। प्रहलाद महाराज एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, प्रभुपाद लिखते हैं कि ज्वलंत उदाहरण है कि ये उनके ही पिता उनको मारने के लिए प्रयास किए, लेकिन फिर भी उनका चित्त जो बहुत शांत रहा, वो अनुद्विग्न रहा। दूसरा गुण है अनुद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रिय श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तु दृक्। श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तु दृक् दान्तः, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। श्रुतेषु मतलब इधर खास करके इस श्लोक में इंद्रिय तृप्ति, कहाँ का इंद्रिय तृप्ति, स्वर्ग में जाके इंद्रिय तृप्ति करने की जो प्रवृत्ति है उसको श्रुतेषु कहा गया है। दृष्टेषु यानी मेरे सामने जो दिखाई पड़ने वाले इंद्रिय तृप्ति की सामग्री है उसको दृष्टेषु कहा गया है। श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु, ये अन्य प्रकार के जो इंद्रिय तृप्ति के सामान हैं या व्यवस्थे हैं, अवस्तु दृक् ये देखने पर भी उनको नहीं देखते हुए ऐसा समझना, सीइंग देम टू बी इनसिग्निफिकेंट। तो ये बड़ा अच्छा गुण है प्रहलाद महाराज का कि जब तक हम इंद्रिय तृप्ति के इंद्रिय विषयों को हम ये नहीं समझेंगे कि ये तुच्छ है, जैसे षड गोस्वामियों के जो त्यक्त्वा तूर्ण अशेष मंडलपतिम श्रेणीम सदा तुच्छवत, वो लोगों ने त्याग किया, कैसे त्याग किया, तुच्छ, तुच्छ मतलब इनसिग्निफिकेंट, उनका कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई उपयोग नहीं, मेरे से कुछ लेना देना नहीं है, इस प्रकार देखना, ये दूसरा गुण था प्रहलाद का। और साथ साथ में और एक गुण था कि दांतेंद्रिय प्राण शरीर दृक् सदा, सदा मतलब हमेशा, वो क्या करते थे, वो दमन करते थे अपनी इच्छाओं को, भले किसी कारणवश आ गया मन में इच्छा आ गया, तो उसको दमन करने की कला उनके पास था। इंद्रिय प्राण शरीर धी, अपनी इंद्रियों में, प्राण में, शरीर में और बुद्धि में कहीं भी कुछ भी भौतिक इच्छा प्रकट हो भी जाता था उनको तुरंत दमन करते थे। तो इधर एक बात महत्वपूर्ण तरीके से जानना चाहिए, भले ही मन में कहीं भी इच्छा प्रकट होता है तो इच्छा को अगर दमन करेंगे तो ये समझना चाहिए कि वो भी शुद्ध भक्त है। ऐसा नहीं कि मन में इच्छा नहीं आ रहा है तो शुद्ध भक्त है, मन में इच्छा आने पर भी अगर उसको दमन करने कर रहा है तो भी उसको शुद्ध भक्त माना जाता है। तो सबसे पहले तो प्रहलाद महाराज के मन में कोई इच्छा था ही नहीं, कभी कभी इच्छा मान लीजिए प्रकट हो भी गया तो उसको दमन कर देते थे। तो प्रशांत कामो रहितो असुरोस रहा, प्रशांत कामो, इसलिए हमेशा वो प्रशांत रहते थे और काम रहित, उनके हृदय में कोई काम नहीं था। तो इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि अपूर्यमाणाम अचला प्रतिष्ठम समुद्रमाप भविष्यन्ति अद्यत शांति माप होती काम कामी। जो व्यक्ति अनेकों कामनाएं मन में बह रहा है, जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियां बहती हैं लेकिन फिर भी समुद्र उद्विग्न नहीं होता है या समुद्र उबर के बाहर नहीं आता है, इतना सारा पानी जाने के वजह समुद्र वैसा का वैसा ही है, वैसे ही मन में बहुत सारे कामना आने पर भी जो व्यक्ति इन मन को समचित्त बना के रख सकता है, शांत बना के रख सकता है, वो व्यक्ति जो है उसको शुद्ध भक्त कहा जाता है। ये भक्त के लक्षण है, ये प्रहलाद महाराज के कुछ लक्षण हैं। क्या उन्होंने अनेकों उनके जीवन में कैसे कैसे प्रसंगों में सब किया वो तो कभी और चर्चा करेंगे आगे के श्लोकों में। आज श्रीपाद रामानुजाचार्य का आविर्भाव दिवस है तो इसके विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जब भी कोई आचार्य का, खास करके श्रीपाद रामानुजाचार्य या मध्वाचार्य का आविर्भाव तिरुभाव आता है तो शुद्ध सेवक लोग सोचते हैं कि बस मुझे एक क्लास देना है। तेनी हो तो श्रीपाद रामानुजाचार्य ओ श्री वैष्णव संप्रदाय के हैं, तो श्री वैष्णव आचार्य हैं। तो आप कह सकते हो इनके बारे में इतना क्यों चर्चा करना चाहते हो, व्हाई यू डिस्कस दैट, हम तो गौड़ीय वैष्णव हैं तो इनके साथ हमारा क्या संबंध है। तो ऐसे ही एक प्रश्न गौड़ीय वैष्णव ने भक्तिनोद ठाकुर से पूछा था, तब भक्तिनोद ठाकुर ने उनको जवाब दिया कि श्री वैष्णव संप्रदाय रामानुजय श्री वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत सिद्धांत श्री चैतन्य प्रेम मंदिर भित्ति स्वरूप, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम का मंदिर है उसका भित्ति स्वरूप, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा प्रेम का मंदिर का निर्माण किया लेकिन वो प्रेम का मंदिर कहाँ निर्माण किया, रामायण संप्रदाय के सिद्धांतों के ऊपर आधारित होकर निर्माण किया। यानी दूसरे शब्दों में कोई भी घर बनाया जाता है उसका बुनियाद या नींव होता है, फाउंडेशन होता है, हाउस इज स्टैंडिंग ऑन ए फाउंडेशन। तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम का मंदिर है, द हाउस ऑफ लव ऑफ गॉड, The house of love of God was built on the foundation of Ramanuja Siddhanta. ये भक्तिनोद ठाकुर का स्वयं का कथन है। तो चैतन्य महाप्रभु रामानुज सारी के बीच में थोड़ा सा जो लीला हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी पहुँचे और वो अति प्रयास कर रहे थे जगन्नाथपुरी में सारा व्यवस्था जो है पूजा की व्यवस्था बराबर हो, उधर के पंडित लोग ने मनमानी सब कार्य करते थे लेकिन रामानुजाचार्य को मालूम नहीं था कि पंडे लोगों का जो मनमानी है वो मनमानी नहीं बल्कि जगन्नाथ का स्वयं का इच्छा है। तो वो सोच रहे थे कि विधि नियम के अनुसार बराबर होना चाहिए, पंचरात्रिक सिद्धांत लागू होना चाहिए, पंचरात्रिक पूजा होना चाहिए, ये क्या हो रहा है, उनका मंत्र उच्चारण भी बराबर शुद्ध नहीं है, अनेकों प्रकार जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगे कि आपका सेवा पूजा का जिम्मेदारी मैं लूँगा। उधर का राजा भी बड़ा प्रभावित हो गए थे, उधर के सारे पंडे तो घबरा गए, उनको तो इतना शास्त्र का ज्ञान नहीं था रामानुजाचार्य को हराने का। तब रामानुजाचार्य ऑलरेडी ऑर्डर संदेश भेजे थे श्रीरंगम, 5,000 श्री वैष्णव आप आइए, आके इधर जगन्नाथपुरी को संभालना है। अभी उधर से निकल भी गए थे लोग,
जैसे खबर मिला कि 5,000 श्री वैष्णव आएंगे अभी इधर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का सेवा का पूरा भार वो संभालने वाले हैं, उधर के जो पंडे हैं वो सब जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगे, वो हमारा सेवा का क्या हो जाएगा जगन्नाथ, कुछ करो। तो जगन्नाथ जी ने कहा आप चिंता मत करो। तो रामानंद आचार्य के स्वप्न में जगन्नाथ जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि आप अपने सेवकों को जहाँ है उधर ही छोड़ो, आप जो है मेरे पास आओ, मेरे धाम में आओ। लेकिन जगन्नाथ जी का जो स्वरूप देखे तो वो अलग सा स्वरूप था उनका। वो कौन सा स्वरूप था? चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप था। तो ने कहा कि मैं आपको अति उच्च रस प्रदान करता हूँ, आपके जो शिष्य वो समझ नहीं सकते, लेकिन उसका ज़रूर मैं आपको थोड़ा सा परिचय देता हूँ। आप निकल के आप अकेले आओ नवद्वीप धाम में। तो ऐसे उनके संदेश दिया तो रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी छोड़ के वो पहुँचे नवद्वीप। वही नवद्वीप में वैकुंठपुर करके एक जगह है, उधर पहुँचे। तो उधर पहुँचे तो जैसे उधर पहुँचे उनके अंदर सारे अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होने लगे। और रामानुजाचार्य तो बड़े गंभीर हैं, श्री वैष्णव संप्रदाय में जाएंगे सारे जो अर्चक है सब गंभीर रहते हैं, एकदम पूजा करेंगे, सारे मंत्रोच्चारण करेंगे। लेकिन उनको ऐसा मन करने लगा मैं नाचूं, मैं गाऊं। वो कूद रहे थे, नाच रहे थे, एकदम मदमत होके गौरंग का नाम उच्चारण कर रहे थे। तब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। भले ही रामानुजाचार्य 11वीं सदी के हैं, चैतन्य महाप्रभु अप्रकट लीला में, क्योंकि नवद्वीप नित्य धाम है, नित्य धाम है तो नित्य रूप में चैतन्य महाप्रभु उधर लीलाएँ करते रहते अप्रकट लीलाओं में। वो प्रकट हुए चैतन्य रामानुजाचार्य के सामने। प्रकट होकर उन्होंने कहा कि रामानुजाचार्य, रामानुज कि आप ये जो शास्त्रों का मर्म जानते हो, लेकिन इस स्वरूप को जानने का प्रयास करो। मेरा नाम है चैतन्य गौरंग। तब रामानुजाचार्य ने सोचा कि आपका ये तो दिव्य स्वरूप है, मैं जब भी शास्त्रों को अध्ययन करता था मुझे एक हमेशा एक प्रश्न मन में आता था, ये सारे शास्त्र एक ऐसा गुप्त रूप का वर्णन कर रहा है, वो गुप्त रूप क्या है मुझे नहीं मालूम पड़ रहा था, अभी मालूम पड़ा कि वो गुप्त रूप कोई और है नहीं, आप ही हो। यू आर दैट फॉर्म ऑफ द लॉर्ड विच ऑल द स्क्रिप्चर्स आर ग्लोरीफाइंग बट इट इज हिडन, आई वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, मैं जान नहीं पाता था, लेकिन अभी मालूम पड़ा कि आप ही हो। तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने ये जो माधुरी रस का वर्णन किया, राधा कृष्ण प्रेम रस का वर्णन किया, तो रामानुजाचार्य ने कहा कि तुरंत मैं अभी पूरा जगत में जाऊंगा, सारा जगत में जाके गली गली में जाके मैं प्रचार करूंगा कि माधुरी रस की श्रेष्ठता। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा उसके लिए समय है, अभी आप दास्य रस का वर्णन करो, तब तक आपके हृदय में मेरा प्रति भक्ति की भावना को आप जागरण करो। तब रामानुजाचार्य ने कहा जब आप प्रकट होंगे तो आपका सेवा करना चाहता हूं मैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप चिंता मत करो, जब मैं प्रकट होऊंगा तो आप एक ब्राह्मण के रूप में मेरी लीलाओं में भाग लोगे। इस प्रकार रामानुजाचार्य प्रकट हुए नवद्वीप में अनंत के रूप में, अनंत विप्र के रूप में प्रकट हुए। तो वल्लभ मिश्रा जो लक्ष्मी प्रिया के पिताजी हैं, चैतन्य महाप्रभु का विवाह के समय में वल्लभ मिश्र के एकदम करीब मित्र थे अनंत। तो अनंत विप्र इतने अच्छी तरह से लक्ष्मी नारायण का पूजा करते थे, सारे नवद्वीप में सोचते थे कि ये जो है ये रामानुजाचार्य का अवतार है, क्योंकि पूजा का निष्ठा इतना था, पंचरात्रिक तरीके से इतना निष्ठा से पूजा करते थे, सभी लोग उनको रामानुजाचार्य का अवतार के रूप में स्वीकार करते थे। वो तो है ही, लेकिन फिर भी वो लोग कहते थे कि इतना निष्ठा से पूजा करता है। तब विवाह होता है तो सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण तो देना पड़ता है। तो चैतन्य महाप्रभु और लक्ष्मी प्रिया का विवाह होने लगा तो उसमें अनंत विप्र को निमंत्रण दिए थे मिश्र, वल्लभ मिश्र। और जैसे अनंत विप्र आए तो उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु और लक्ष्मी प्रिया, चैतन्य महाप्रभु कौन है? नारायण स्वयं है और लक्ष्मी जी है। इनको देख के इनके अंदर सारे भाव के लक्षण उत्पन्न हुए कि एकदम नाचने लगे, गाने लगे, नाम को उच्चारण करने लगे मदमत होके। विवाह के समय तो पूरा यज्ञ का हवन का सब बहुत सामग्री रखा रहता है, ये भी नहीं देखे क्या हो रहा है, ये सारा जो जितने भी सामग्री रखा था वो तहस नहस हो गया, नष्ट हो गया, सब लोग उनको पकड़ने लगे, तो फिर भी वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। जिसका भक्ति का भाव का लक्षण प्रकट होता है तो उनको कौन पकड़ सकता है, कोई नहीं पकड़ सकता है। तो कैसे भी करके सब लोगों ने उनको शांत करने के लिए उनको पकड़ के उनको घर लेके गए, और एकदम आंखों से आंसू बहते हुए वो गौरा 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 करके बोलने लगे। तब उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु उनके सामने प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु जैसे प्रकट हुए तो चैतन्य महाप्रभु जानते हैं ये कौन है, रामानुजाचार्य है। तो चैतन्य महाप्रभु से दो स्वरूप प्रकट हुए, नारायण चतुर्भुज नारायण और लक्ष्मी जी। और इन स्वरूपों को दर्शन करते करते अनंत विप्र वो गौरा गौरा करके नाम उच्चारण करते हुए आंख बंद करके अपना शरीर त्याग किए। ये पुरोहित के रूप में आए थे अनंत विप्र। पुरोहित में रूप में आके चैतन्य महाप्रभु का और लक्ष्मी प्रिया का स्वरूप को दर्शन करते हुए उनके अंदर सारे भाव के लक्षण प्रकट हो गए। चैतन्य भागवत में और इस प्रकार का वर्णन है कि अनंत विप्र का लीला। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में रामानुजाचार्य भाग लिए, ही वॉज देयर। इतना ही नहीं, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए तो श्रीरंगम में 4 महीना उन्होंने रुका। इसका मतलब क्या है कि चैतन्य महाप्रभु का श्री वैष्णव का बहुत गहरा संबंध है। इतना नहीं, जब चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम गए उधर वेंकट भट्ट, उनके पुत्र का नाम था गोपाल भट्ट, उनको ऐसा आकर्षित कर दिए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु को शरण ग्रहण किए। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, खास करके आप ये ग्रंथ का नाम जानते हो हरिभक्ति विलास, इसका मूल रूप में जो लेखक कौन है, गोपाल भट्ट गोस्वामी है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने जो श्री वैष्णव संप्रदाय के जो टीचिंग्स है उधर से जितना भी ज्ञान है वो सब लाके गौड़ीय वैष्णवों को अनुकूल होने के लायक ऐसा ग्रंथ को प्रस्तुत किए जिसका नाम है हरिभक्ति विलास। तो इस प्रकार श्री वैष्णव संप्रदाय के साथ हमारा बहुत गहरा संबंध है। आप सबको मालूम है कि 4 संप्रदाय हैं वैष्णव संप्रदाय। क्या है वो? ब्रह्म रुद्र श्री कुमार। चैतन्य महाप्रभु ने दो दो बातों को ये 4 संप्रदाय से स्वीकार किया। कोई कह सकता है क्या क्या दो बातें हैं 4 संप्रदाय से स्वीकार किया शुद्ध सेवक प्रभु? श्री वैष्णव संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्ति, ज्ञान कर्म रहित शुद्ध भक्ति को। दूसरा, श्री वैष्णवों की सेवा, वैष्णव सेवा, दो बातों को स्वीकार किया। और मध्य संप्रदाय से विग्रहों की सेवा, विग्रहों का सत्य रूप मान के सेवा करना, मायावाद भाष्य का खंडन, ये दो बातों को मध्य संप्रदाय से स्वीकार किया। और वही चैतन्य महाप्रभु रामा निम्बारक संप्रदाय से राग भक्ति, सॉरी राधा कृष्ण का विग्रहों को सर्वोच्च विग्रह के रूप में स्वीकार करना और गोपियों के पदचिन्ह में चलना, ये निम्बारक संप्रदाय स्वीकार किया। विष्णु स्वामी संप्रदाय से, विष्णु स्वामी मतलब रुद्र संप्रदाय से, दो बातों को स्वीकार किया, एक राग भक्ति, एक है संपूर्ण रूप में कृष्ण के ऊपर निर्भर करना। तो ये 8 तत्वों को दो दो करके 4 संप्रदायों को स्वीकार किया चैतन्य महाप्रभु। अस्तित्व में ये दो दो बातों को चैतन्य महाप्रभु स्वयं दिए थे चारों आचार्यों को। और आके उन्होंने क्या किया, जैसे बड़ा बिल्डिंग खड़ा होता है 4 खंभों के ऊपर खड़ा रहता है, ये 4 खंभे चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं पहले प्रदान किए, बाद में वापस आके वो इन 4 संप्रदायों से स्वीकार किए। और ऐसा चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम का मंदिर जो है उन्होंने निर्माण किया। ये हमारा संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय और श्री वैष्णव संप्रदाय के बीच में इतना गहरा संबंध है। आप अभी भी जाएंगे श्रीरंगम में, आप गौड़ीय तिलक देख के सब लोग आदर देंगे, प्रणाम करेंगे, हरे कृष्ण। एकदम श्रीरंगम मंदिर के सामने ही चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह है। उधर एक श्री वैष्णव को नियुक्त किया गया है उसको रोज सेवा करने का। चैतन्य महाप्रभु और रामानुजाचार्य के बीच में बहुत गहरा संबंध है। ये पहला बात है रामानुजाचार्य के बारे में। दूसरी बात है, ये कौन है रामानुजाचार्य, हु इज ही? ये एक साधारण पुरुष नहीं है, ये शक्ति आवेश अवतार है। कौन सी शक्ति का आवेश अवतार है? अनंत शेष का जो शक्ति है, अनंत शेष क्या कर रहे हैं, अनंत काल से भगवान के अनंत गुणों का वर्णन कर रहे हैं, अनंत काल से उनके अनंत मुख से अनंत काल से वर्णन कर रहे हैं। ही इज ग्लोरीफाइंग द अनलिमिटेड लॉर्ड फ्रॉम टाइम मेमोरियल, अनलिमिटेड टाइम विद हिज अनलिमिटेड टंग्स। तो ये भगवान को गुणगान करने की जो शक्ति है उसके द्वारा आवेशित है रामानुजाचार्य। तो इज एम्पावर्ड इनकर्नेशन ऑफ द ग्लोरीफाइंग पोटेंसी ऑफ अनंत। तो ये रामानुजाचार्य अपनी लीलाओं में प्रकाशित किए। मैसूर के पास जगह भी है, उधर का एक जैन राजा था, तो रामानुजाचार्य का ख्याति सुन के वो उनको निमंत्रण दिया। लेकिन उतने जैन साधु लोग थे वो सब सोचने लगे अरे रामानुजाचार्य आ गया तो हमारा पत्ता कट जाएगा। तो उन्होंने कहा कि रामानुजाचार्य जो है वो गलत सिद्धांत है सब कुछ बोलने लगे। तो जैन राजा ने कहा कि अगर ऐसा है तो उनके साथ शास्त्रार्थ करो, यू हैव ए डिबेट। तो रामानुजाचार्य जो है वो आए और सारे जितने भी जैन मुनि थे खड़े थे, उन्होंने कहा कि हमारा एक शर्त है, वन कंडीशन, वी विल आस्क, सारे जितने भी लोग हैं हम सब लोग एक ही बार अलग अलग प्रश्न पूछेंगे, वी विल आस्क डिफरेंट क्वेश्चन एट द सेम टाइम एंड रामानुजा टू आंसर ऑल द क्वेश्चन एट वन टाइम। तो राजा ने समझा कि ये जो है बड़ा चतुर लोग है, फिर भी ये शर्त है तो करो। रामानुजाचार्य ने कहा कि अगर ये शर्त मेरे लिए मंजूर है, लेकिन मेरा भी एक शर्त है कि मैं सबके सामने दिखूंगा नहीं, मैं एक पर्दे के पीछे छुपा रहूँगा। तो रामानुजाचार्य पर्दे के पीछे थे और सारे जितने भी जैन हुए थे हजारों लोग थे, सभी लोगों ने एक ही समय में हजारों प्रश्न पूछे, वन इंस्टेंस थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। तो रामानुजाचार्य थोड़ा बहुत समय तक कुछ क्षणों के लिए साइलेंस था, अचानक से ऐसा भयानक सा घुड़ घुड़ करके निकला। तो समय उनके शिष्य थे रामानुजाचार्य के, वो थोड़ा सा पर्दा खोल के देखे, उधर रामानुजाचार्य नहीं तो एक बड़ा सा सांप था, अनंत देव था। अनंत देव के पास हजारों मुख है, इन हजारों मुखों से सबके कानों में ऐसा उनको प्रश्न का जवाब मिल गया। तो सब लोग, आधे लोग तो भाग गए और आधे लोग जो उनके शिष्य बन गए। तो रामानुजाचार्य इज द एम्पावर्ड इनकर्नेशन ऑफ द ग्लोरीफाइंग पोटेंसी ऑफ अनंत। तो वो जगह, वो जो फोर्ट है अभी भी है। जैसे प्रहलाद महाराज के प्रसंग में आप सुनते हो कि असुर का पुत्र होने के बावजूद भी उनके अंदर सारे दैवी गुण आए, ये सिद्धांत को रामानुजाचार्य ने प्रचार किया। जाति मत भेद वो सबको उन्होंने देखा नहीं। अस्तित्व में ऐसा माना जाता है कि आचार्य मतलब रामानुज, पहले आचार्य का ये शब्द जो है, जैसे भाष्यों में शारीरिक भाष्य को भाष्य माना जाता है, आचार्यों में रामानुजाचार्य को आचार्य माना जाता है। जैसे आप बोलेंगे आचार्य, इट इंडिकेट्स रामानुज, ऐसा स्थिति। तो श्री प्रभुपाद जी के अंतर्गत आपको ये सारे दिव्य जितने भी आचार्यों के, पूर्व आचार्यों के जो गुण हैं वो सब प्रकाशित होते हैं। जैसे मध्वाचार्य मतलब वो केवल बुद्धिमान लोगों को पकड़ते थे, राजाओं को पकड़ते थे, उनको प्रचार करते थे, उनका वही काम था। वो साधारण जनता में जाके लोगों के साथ बैठ के प्रचार करना, ये सब चीज़ें दिखता नहीं उनके लीलाओं में। लेकिन रामानुजाचार्य का ऐसा नहीं, तो सबसे गया गुजरा उनके पास जाते प्रचार करो, जैसे प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी क्या किए, ही वेंट टू द वेस्ट, वो पाश्चात्य देश में जाके प्रचार किए। तो रामानुजाचार्य वो बहुत प्रचार करने के लिए प्रयास किए, कहाँ, तमिलनाडु में, कांचीपुरम में बहुत प्रचार किया, बहुत प्रयास किया। कितना भी कुछ भी करो, उधर का राजा जो है बड़ा द्वेषी था, वो शैव था, वो चाहता था कि सभी लोग शैव बन जाए। रामानुजाचार्य इतना प्रचार करने के बाद भी उन्होंने सोचा कि इधर कुछ होने वाला नहीं है, इतना हद तक कि वो राजा जो है रामानुजाचार्य को मारना चाहता था। तो रामानुजाचार्य जो अपने शिष्य का सहारा लेते वो भाग गए उधर से, रन अवे फ्रॉम देयर। तो जैसे प्रभुपाद जी बहुत प्रचार करने के लिए प्रयास किए भारत में, लेकिन उधर के जो लीडर्स थे झांसी में, उधर के जो वरिष्ठ लोग थे, वो सब उनको करने ही नहीं दिया, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग। तो प्रभुपाद ने क्या किया, इवेंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो वैसे रामानुजाचार्य तमिलनाडु जो ईस्ट में है, कर्नाटक गए, वेस्ट में है। कर्नाटक गए तो कहाँ गए, वो ऐसा जगह गए कर्नाटक में जिसका नाम है मेलकोट, अभी भी है, उधर केवल आदिवासी रहते थे। उनको आदिवासी मतलब जानते, कितने गंदे रहते, लेकिन बहुत एकदम उनका विचार और उनका रहन सहन तो, लेकिन उनका एक अच्छा गुण था, क्या था वो, रामानुजाचार्य के प्रति उनको अटूट श्रद्धा था। वो श्रद्धा क्यों था, वो श्रद्धा इसलिए था, उन्होंने देखा रामानुजाचार्य ने उधर बहुत गरीब अवस्था में सब लोग हैं, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उधर का जमीन इतना बड़ा है लेकिन फिर भी उधर कोई उगता नहीं है, क्यों, का पानी नहीं है। तो रामानुजाचार्य ने देखा दूर से कोई एक नहर बह रहा था, एज ए रिवर फ्लोइंग, इधर एक नदी है फिर भी इनको पास पानी क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो रहते थे वो जो ऊंचे स्थान में था, नदी जो नीचे स्थान में बहता था। तो रामानुजाचार्य का इंजीनियरिंग देखिए, सिविल इंजीनियरिंग, उन्होंने ये पावडल होता है ना उसको लिया, एंड ही स्टार्ट डिगिंग द अर्थ, उधर का मिट्टी लेके दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होता उधर भरने शुरू किया। स्वयं रामानुजाचार्य अपने हाथ सर के ऊपर मिट्टी लेके उठा के गए और सब लोग देखने लगे, अरे महान, इतना विद्वान व्यक्ति वो कर रहे थे, हम भी करेंगे। तो एवरीबडी स्टार्टेड फिलिंग द गैप बिटवीन द टू माउंटेन्स। तो धीरे धीरे से वो लोग देखने लगे, ये जितने भी जो नदी का पानी है वो पहाड़ों के बीच में आया और ये पहाड़ों के बीच वाला जो जगह से निकल रहा था उधर से एक डैम बना दिया। रामानुजाचार्य स्वयं अपने हाथों से एक डैम बनाया, खाली मिट्टी से, सीमेंट रेती कुछ नहीं, कोई इंजीनियरिंग कोई डिजाइन कुछ नहीं है, अकेले उनके जो आदिवासियों के साथ। अभी भी वो डैम है, जाके देखेंगे, इतना पूरा पानी भरा हुआ है कि उसकी वजह से हजारों हेक्टेयर लैंड जो जमीन जो है वो अभी बहुत सार हो गया, उसके अंदर सार से भर गया, बहुत खेती होता है। तो उधर के लोग बहुत खुश हो गए क्योंकि रामानुजाचार्य की वजह से उनको थोड़ा सा खाने को तो मिला। आप देख सकते हो प्रभुपाद जी भी ऐसे कि अमेरिका गए, वेस्ट गए, तो कहाँ उतरे, न्यूयॉर्क में, वो भी ब्रोवरी में, ऐसे लोगों के बीच में जिनका कोई खाने के लिए बराबर नहीं था। एक प्रभुपाद जी के शिष्य कहते थे कि मैं आता था क्योंकि मुझे खाने के लिए कुछ नहीं था, रहने का कोई जगह नहीं था, ये व्यक्ति जो है बड़ा प्रेम से मुझे स्वागत कर रहा है, मेरे पास रख रहा है, तो रिश्ते में चला गया उधर, मैं धीरे धीरे से भक्त बन गया। तो वैसे ही रामानुजाचार्य ने उनका श्रद्धा जीता। कैसे श्रद्धा जीता, उन लोगों की जो आवश्यकता उनको पूरा किया। और पाश्चात्य देश में लोगों की क्या आवश्यकता थी, प्रेम की आवश्यकता थी, तो प्रभुपाद जी ने प्रेम दिया तो सभी लोग आ गए प्रभुपाद जी के पास। और सबसे पहला रामानुजाचार्य ने क्या किया, उन सबको लेके गए, सबको लेके उन्होंने कहा कि आप सब लोग श्री वैष्णव तिलक धारण करो। तिलक धारण कराया और उनको एक मंत्र, द्वय मंत्र प्रदान किया। भले उनके पास कोई योग्यता नहीं था, वो कौन थे, आदिवासी थे, श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, ये द्वय मंत्र, दो मंत्र है, श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमन नारायणाय नमः, एक दूसरा है श्रीमते नारायण, श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये, ये दो मंत्रों को साथ में उच्चारण किया जाता है, उसको द्वय मंत्र कहा जाता है। तो द्वय मंत्र प्रदान किया, वो धीरे धीरे से मंत्र जप करते हुए उनके पास योग्यता आई विग्रह की पूजा करने की। तब रामानुजाचार्य के स्वप्न में एक विग्रह का स्मरण हुआ, तो कहाँ है उनको मालूम पड़ा, सारे जितने भी आदिवासी उनको लेके गए, जाके उधर खुदाई किया तो उनको एक विग्रह प्राप्त हुआ जिसका नाम था चेलुव नारायण, सुंदर नारायण। ये कन्नड़ भाषा में सुंदरता को चेलुआ बोला जाता है, सुंदर नारायण विग्रह भी है, दे वर्शिप द डेटी। तो विग्रह को प्रदान किया, सब लोग विग्रह का पूजा करने लगे, तो धीरे धीरे से उधर के जितने भी आदिवासी थे बड़ा विद्वान बन गए, बड़े पंडित बन गए, बिकेम वेरी स्कॉलरली। तो रामानुज सिद्धांत को अच्छी तरह से पढ़ने लगे और उन सबको उन्होंने जनेऊ प्रदान और दीक्षा प्रदान किया, पंचरात्रिक दीक्षा। इस प्रकार 17 साल श्रीपाद रामानुजाचार्य उधर बहुत सारे ग्रंथों को खास करके श्रीभाष्य रचना किए और सारे उधर के आदिवासी हैं उनको बड़ा विद्वान बनाया। तो ये आचार्य का महिमा है। हस्तियत में कोई सोच भी नहीं सकता कि आदिवासी हो या पाश्चात्य देश के जो लोग हैं भगवद्गीता भागवत के प्रवचन दे सकता है करके। ये मिरेकल है। एक श्री वैष्णव मुझे बता रहे थे, मैं जब तिरुपति गया था, उन्होंने कहा कि अनेकों आचार्य आए लेकिन रामानुजाचार्य जैसे कोई नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ये आदिवासियों को उन्होंने ब्राह्मण बनाया। तब उन्होंने कहा कि जैसे कि आपके प्रभुपाद उसे उन्होंने कहा जैसे कि आपके प्रभुपाद है ना, हम कहते हैं ना आपके प्रभुपाद, लाइक योर प्रभुपाद। श्री वैष्णव ने कहा, मैंने कहा कि कम से कम आदिवासी जो थे वो इधर के तो थे, भारत के तो थे। मैंने कहा प्रभुपाद जी जो है पाश्चात्य देश में जो आदिवासी कम से कम उस टाइम में गाय का मांस तो नहीं खाते थे, प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को बनाया। तूने कहा ऐसा था क्या? इट इज ट्रू दैट ही मेड देम। देयर सो मेनी पैरेलल्स वी कैन ड्रॉ बिटवीन रामानुजस लाइफ एंड श्री प्रभुपाद लाइफ। तो रामानुजाचार्य का आज प्राकट्य है। तो ये प्राकट्य दिवस के दिन हमको उनकी शिक्षाओं, तो ये शिक्षाएं, अनेकों शिक्षाएं रामानुजाचार्य ने प्रदान किया। ये शिक्षाओं को आखिरी में जब वो अपना शरीर त्याग कर रहे थे, वो समय में उन्होंने 74 इंस्ट्रक्शंस दिए। उन्होंने इनको रामानुज दिव्याज्ञ कहा जाता है। तो कोई भी पूजा सब संपन्न होने के बाद अंत में सारे श्री वैष्णव 3 बार इस बात को उच्चारण करते हैं, पूरा जगत में रामानुज दिव्याज्ञ का स्थापना हो, सारा जगत में रामानुजाचार्य का दिव्याज्ञ का स्थापना हो, सारा जगत में रामानुजाचार्य का दिव्याज्ञ का स्थापना हो, ऐसा वो प्रार्थना करते हैं, ऐसा घोषणा करते हैं। तो ये रामानुज संप्रदाय में भले ही पूजा विधि जो है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रचार भी जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन सारे श्री वैष्णव बोलते तो सही है कि सारा जगत में रामानुजाचार्य का दिव्याग्नि की स्थापना हो, लेकिन स्थापना करने वाले कौन है? श्री प्रभुपाद जी। तो इन दिव्याग्नि क्या है वो थोड़ा बहुत हम चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। व्हाट आर दिस इंस्ट्रक्शंस विच रामानुजाचार्य गेव एट दैट टाइम ऑफ डेथ, क्योंकि उनके लीलाओं को तो अनेकों बार मैंने कहा है, मैंने सोचा कि उनकी इंस्ट्रक्शंस टीचिंग्स जो है वो मैं क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालूं। सबसे पहला, मेक नो डिफरेंस बिटवीन द वर्शिप यू रेंडर टू योर स्पिरिचुअल टीचर एंड द श्री वैष्णवस। सबसे पहला, आप जितना सम्मान आपके गुरु को देते हो उतना ही सम्मान अन्य वैष्णव को दो। ये मत सोचो कि ये तो साधारण व्यक्ति है, मेरा गुरु है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन, आप जो सम्मान गुरु को देते हो उतना ही आदर और सद्भावना अन्य वैष्णवों के प्रति रखो। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन, हैव अर्नेस्ट फेथ इन द टीचिंग्स ऑफ द ग्रेट टीचर्स ऑफ द योर। ये मत सोचो कि आपका गुरु सब कुछ है और पहले के आचार्य कुछ भी नहीं है। नहीं, पहले के आचार्यों को आदर देना, उनकी शिक्षाओं के ऊपर श्रद्धा रखना अति महत्वपूर्ण है। पूर्वज आचार्य, श्री वैष्णव की पूजा का विधि के अंत में आता है कि सर्वैराचार्यास्त सत्क्रियास्त मंगलम, ये पूजा विधि में आता है। मैं सारे तरह में अन्य पूर्वज आचार्य है उन सारे आचार्यों का स्मरण करने से मेरा मंगल होगा। ऑल ऑस्पिशियसनेस विल बी देयर ओनली व्हेन आई रिमेंबर ऑल द प्रीवियस आचार्यस। तीसरा है, कंटिन्यू नॉट टू बाउंस ऑन द सेंसेस। आपके इंद्रियों को दमन करने का प्रयास करो। डू नॉट रिमेन कंटेंट विद द एक्विजिशंस ऑफ सेंशुअल नॉलेज। आपके पास, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, मैं PhD हूँ, मैं डॉक्टर इंजीनियर हूँ, इसके द्वारा आप संतुष्ट मत रहो। डोंट बी जस्ट हैप्पी मैंने कुछ भौतिक ज्ञान प्राप्त किया तो, नहीं। डिलाइट इन द स्टडी ऑफ द राइटिंग्स एंड ग्लोरीफाई द लॉर्ड एंड हिज वर्क्स। आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ जो रचना है उसी में आप रमण करो, उसी में आनंद करो। जस्ट टेक प्लेजर ओनली इन स्टडिंग द आचार्यस कमेंट्रीज ऑन द ग्रेट वर्क्स। Once that your master has opened your eyes to the light of the light, never again be seduced by the fatal charms of the senses.
जैसे कि आपके गुरु ने आपकी आंखों को खोला है, एक बार आपको आंखों को खोलने के बाद आप ये जो इंद्रियों के प्रति आकर्षित मत हो, इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षित मत हो जाओ. वो आकर्षित कर रहे लेकिन ये समझो कि आपने, आपका गुरु ने आपका दिव्य आज्ञा दिया है, आपकी आंखों को खोला है, उनका कृपा मिलने के बाद भी उधर जाओगे कितना बड़ा आपका ये धिक्कार है आपका.
लर्न टू रिगार्ड ऑल सेंसेशंस विद इक्वल इंडिफरेंस.
जितने प्रकार के ये जो सेंसेशंस है, इमोशंस है, सुख दुख आने पर भी समान भावना बना के रखो.
डू नॉट बी टू मच एडिक्टेड टू द यूज ऑफ सैंडल फ्लावर्स एंड स्वीट सेंट्स.
चंदन और फूल पुष्प और अन्य सुगंध पदार्थ के प्रति आप आकर्षित मत रहो, सेंट नहीं लगाना चाहिए.
Recite the names and glories of servants of the Lord with as much delight as you would do his own.
जितना आनंद से आप भगवान की स्तुति करते हो उतना ही आनंद से, the same amount of delight you glorify the devotees.
भक्तों के गुणगान और भगवान का गुणगान जो है वो दोनों में अभिन्नता है.
There's no difference between glorifying the Lord and glorifying the devotees.
Let it be engraven upon your heart that no one reaches the feet of the Lord sooner than he who remains devoted to the service of the servants.
रामाचार्य कहते हैं कि सबसे जल्दी अगर भगवान के चरण के पास पहुंचना है तो आपको उनकी भक्तों का सेवा करना होगा. भगवान के भक्तों का जो भक्त होता है उनका सेवा करने में ही आप शीघ्रता से भगवान का चरण प्राप्त कर सकते हो.
The wisest of men perishes hopelessly if the devotee is if he devotes not himself entirely to the service of the Lord and his elect.
तो अगर आप भगवान और भक्तों के सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित नहीं करते हो तो निश्चित रूप में आपका जीवन जो है बेकार है.
Never regard the life of Vaishnavas as a means to end.
बड़ा महत्वपूर्ण चीज है. आप ये मत समझो कि वैष्णव का सेवा जो है इसके द्वारा मुझे भगवान प्राप्त होंगे. वैष्णव का सेवा ही आपका साध्य है. वैष्णव का सेवा जो है वो साधन नहीं है, वो साध्य है. ये सोचता कि मैं वैष्णव का सेवा करूंगा भगवान प्राप्त होंगे, ये बात मन में मत रखो. वैष्णव का सेवा ही साध्य है.
Don't consider serving the Vaishnavas is a means. Serving the Vaishnava is not the means, it is the end in itself.
Wo sadhya hai.
It is verily the goal you should try to reach.
Antatah, ye samajh lo. Aap agar Vaishnava ki seva karte ho, Bhagwan ki kripa se Vaishnava ka seva milta hai. Ye mat socho कि वैष्णव का सेवा करने से मुझे भगवान का कृपा मिलेगा, एक गौण चीज नहीं है. भगवान का कृपा जिसके ऊपर हुआ तो वैष्णव सेवा में संलग्न है. ये रामानुजाचार्य के सिद्धांत है.
नेवर एड्रेस एनी सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड इन अदर देन रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज.
वैष्णव को बहुत आदर भाषा में संबोधित करना चाहिए.
व्हेन एवर यू कास्ट योर आईज अपॉन वैष्णवस फेल नॉट टू सैल्यूट हिम फर्स्ट.
जैसे आप वैष्णव को दर्शन करते हैं तो तुरंत प्रणाम करो.
नेवर सिट स्ट्रेच्ड एट ईज इन प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एंड हिज इलेक्ट और अदर होली मैन.
वैष्णव और भगवान के सामने आप ऐसा आराम से एकदम हाथ पैर फैला के बैठा मत.
नेवर स्लीप विथ योर फीट टूवर्ड्स द हाउस ऑफ द लॉर्ड और द टीचर और द लॉर्ड्स इलेक्ट.
आप कभी भी भगवान के मंदिर के ओर पैर रखते हुए या भगवान के भक्तों के घर की ओर भी पैर रखते हुए आप सो मत.
एज सून एज यू वेक रिसाइट द नेम्स एंड ग्लोरीज ऑफ स्पिरिचुअल हायरार्की.
सुबह सुबह उठते ही आप सारे गुरु परंपरा के जितने भी आचार्य, सारे आचार्यों का नाम उच्चारण करो.
व्हेन द वैष्णवस आर सिंगिंग द नेम्स एंड द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड हरि और स्पिरिचुअल मास्टर वर्शिप देम टू द बेस्ट ऑफ द माइट. जितना सामर्थ्य उतना सामर्थ्य के अनुसार वैष्णव को सेवा करो. व्हेन यू हियर द वैष्णव इज कमिंग ओवर टू यू फेल नॉट एडवांस वेलकम. कोई वैष्णव के पास आ रहा है ये मत सोचो कि ठीक है आने तो मैं तो बैठा रहूंगा. वो आता है तो यू गो नियर हिम. डोंट एक्सपेक्ट दैट ही विल कम टू यू. व्हेन ही इज अप्रोचिंग यू यू शुड फर्स्ट गो एंड अप्रोच हिम. Maintain thyself by taking humble service under Vaishnavas. But to wait upon persons to have not been touched with glance, to frequent their homes, to put their names before thine, seek their livelihood at their hands, this will verily degrade thee in no time. Jo vyakti sochta hai ki Vaishnavon se main kuch dhan prapt karun, unse main kuch paisa prapt karun, aur unka jo kripa prapt नहीं करता वो व्यक्ति जो है निश्चित रूप में नरक जाता है. द मोमेंट यू कास्ट योर आइज अपॉन द टेम्पल्स ऑफ द लॉर्ड द डोम्स और द स्प्रिंग्स देयरऑफ जॉइन द हैंड्स टुगेदर इन प्रोफाउंड रिवरेंस. आप जैसे मंदिर के सामने से जा रहे हो जैसे आप देखते हो शिखर को देखते हो तुरंत आपको हाथ जोड़ना चाहिए. डू नॉट क्रॉस द शैडो वैष्णवस. वैष्णवों का जो छाया है परिछाई है उसको भी आप पार मत करो. उसके ऊपर भी आपका अपना पैर नहीं लगना चाहिए. और आपका जो परिचाई है डोंट अलाउ योर शैडो टू फॉल ऑन देम. आपका जो परिचाई है उनके ऊपर गिरना नहीं चाहिए. इफ यू टच वन आउट ऑफ द फेथ टच नॉट ए श्री वैष्णव बिफोर यू आर प्यूरिफाइड. भले ही आपका कितना भी श्रद्धा हो प्रेम हो लेकिन आप श्री वैष्णव का शरीर को तभी स्पर्श करो जब आप शुद्ध हो. शुद्ध हो के आप श्री वैष्णव का शरीर को स्पर्श करो. इफ ए श्री वैष्णव शुड सैल्यूट यू फर्स्ट एंड से आई एम द सर्वेंट show him not any disrespect for it is a heinous sin. agar koi vaishnava aapke paas aake pranam karta hai ki main aapka daas hu aap unko aisa dikhar mat karo. if you should happen to aware of defects of any vaishnava sleepiness idleness low birth etc proclaim them not to others keep them to yourself and give out only the good characteristics. aap kisi vaishnava mein dosh dekhte ho तो वो दोष को अपने आप के अंदर रख के हजम कर लो. अगर बोलना ही है वैष्णव के बारे में केवल उनके अंदर जो गुण है वही चीज बताओ. डोंट स्पीक एनी इल अबाउट वैष्णवस. नेवर पार्टेक द होली वाटर दैट हैज वॉश्ड द फीट ऑफ द लॉर्ड और ऑफ हिज सर्वेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ द अनलिमिटेड अनइनिशिएटेड. तो दीक्षा ग्रहण नहीं किए उनके सामने जो ये वायु भक्तों का चरणामृत स्वीकार मत करो. Fail not at any cost to procure partake every day the holy water. भक्तों का जो महाप्रसाद है चरण धूली है और चरणामृत है वो हर रोज प्राप्त करने का प्रयास करो. Regard the great ones who has adorned with such virtues as dispassion, wisdom and devotion as the holy name, holy being that have assumed their last pure fleshy virtues. And serve them to the best of your might. आप चुनो जिनके पास ये महान भक्ति के गुण हैं भक्तों का गुण है उन सबको चुन चुन के आप ऐसे लोगों को सेवा करने की तत्परता रखो. Partake not the holy water that had washed the feet of the Lord in the house of the unbelievers. Partake not the holy water that has washed the feet of the Lord in the homes of the unbelievers. जो लोग वैष्णव के प्रति श्रद्धा नहीं रखते उनके घर में अगर भगवान का भी चरणामृत है उसको ग्रहण मत करो. बड़ा पावरफुल इंस्ट्रक्शन है ये. नॉर ऑफर वर्शिप टू द आइडल्स ऑफ द लॉर्ड इन देयर हाउसेस. उनके घर में जाके आप पूजा भी मत करो जिन लोगों का श्रद्धा वैष्णव में नहीं है. रिगार्ड द ऑफरिंग्स ऑफ द लॉर्ड एज होलियर देन द होलियस्ट इट बर्न्स योर सिंस. से नॉट इट इज नॉट प्योर इट हैज बीन ऑफर्ड बाय सच मान लो कोई वैष्णव है आपके पास आके कहता है भगवान का प्रसाद है आप उसको दिखार मत करो. क्योंकि वैष्णव जो है शुद्ध भाव से भगवान को अर्पण किया है तो भले ही आपको दिखाई पड़ रहा है ये अशुद्ध है ये है उसको स्वीकार करना चाहिए क्योंकि एक वैष्णव ने आपको अर्पण किया है प्रसाद करके. नेवर एक्सट्रोल थाइसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ वैष्णवस. स्वयं अपना स्तुति मत करो वैष्णव के सामने मैं ऐसा किया मैं वो हूँ. डोंट डू दैट. Nor put others in shame. दूसरों को लज्जित मत करो. सार रूप में देखा जाए पूरा जितने भी 74 instructions है ये वैष्णवों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए उसके ऊपर आधारित है। इसे टाइम हो गया इसलिए मैंने थोड़ा एक झलक मात्र दिया। 74 इंस्ट्रक्शंस रामानुज दिव्याज्ञा, तो ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीरंगम, तिरुपति, कांचीपुरम, ये तीन उनका महत्वपूर्ण क्षेत्र है। श्रीरंगम रंगनाथ जी है, कांचीपुरम में कौन है वरदराज जी है, और तिरुपति में बालाजी है। श्री वैष्णव संप्रदाय 800-900 साल पुराना है। ये इतना सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे चीज़ें हैं, बोलते बोलते जाएं अनंत का गुणगान भी कौन कर सकता है। अनंत भी अनंत है, अनंत इज अनंत, अनलिमिटेड, वी कैन नॉट ग्लोरीफाई इवन अनंत। रामानुज दिव्याज्ञ, ये समझना चाहिए कि रामानुज संप्रदाय के साथ हमारा बहुत कुछ लेन देन है। आज रामानुजाचार्य से प्रार्थना करना चाहिए कि आपकी संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने जो लिया है शुद्ध भक्ति ज्ञान कर्माध्यनावृतम, दूसरा क्या है वो वैष्णव, इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। जिस वर्षिप द वैष्णव, वैष्णव सेवा करो। हरे कृष्ण। रंध्राश्रीमद्भागवतम की श्री प्रभुपाद की जय।